और आगे सूरत अल अनकबूत है। दोनों का रब ले लीजिए। सूरत कसस जो अभी हमने पूरी की, फिरौन की फौजी हुकूमत के मुकाबले में बनी इसराइल की मजलूमियत का जिक्र पड़ा। ये सारी कहानियां उधर से थी जो आज के हालात पे भी फिट हो रही थी। अब सूरत अनकबूत में हम मक्का के नए नए मुसलमानों की मजलूमियत और अहले कुरैश का जुल्म देखेंगे। तौहीद के बहुत खूबसूरत दलाइल भी हैं इसमें, और सूरत का एंड जो कि अगले पारे में होगा, वहां मकड़ी के घर से मिसाल दी, क्योंकि अनकबूत कहते हैं मकड़ी के घर को, कि गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले। आइए इसकी शुरू की 44 आयतें इस पारे में, और बाकी इंशाल्लाह अगले तो पर अपने एंड की तरफ जा रहा है। और तरतीब में देखें तो 29 नंबर सूरह अल्हम्दुलिल्लाह, 28 सूरतें पूरी हुई। थोड़ा सा इस सूरत के ऊपर एक हल्का सा नजर डाल लीजिए, एक तायराना नजर, सूरत अनकबूत, क्योंकि ये जरूरी है। मैं इसका एक नाम अपने नाम से देती हूँ, कोई जरूरी नहीं आप लिखें, दुखी लोगों की सूरत। इस सूरत की एक आयत को पढ़ के रोने को दिल करता है। 5 नबवी का दौर था, मुसलमान मुशरिकीन के जुल्म का शिकार थे, अहले तौहीद को आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा था, हिजरत की नौबत भी आ सकती थी। इस सूरत में मुसलमानों को हिजरत के इशारे दिए गए और आजमाइशों के लिए तैयार रहने की दावत दी गई। कैसे? आप देखेंगे कि सूरत की आयत नंबर 10 और 11 में हिजरत के इशारे हैं, इन नारदी वासियत उनमें। फिर इस सूरत में फितने, जिसको आप कहते हैं परसिक्वेशन, इस्लाम पे अमल करने पे सजाएं, धमकियां, उसके 3 असूल आप समझेंगे अभी। यानी इस सूरत में फितने यानी आजमाइशें जो इस्लाम के नाम पे मुसलमानों पे आती हैं, उसके 3 असूल हैं। नंबर 1, तौहीद का इकरार करने के बाद, ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद आजमाइशें आकर रहेंगी। पहली ही आयत में हम देखेंगे इसको भी। नंबर 2, दावते तौहीद आजमाइशों से भरी हुई है, और आजमाइशों का मकसद सच्चे मोमिनों को छांटना और झूठों को अलग करना। फिर इस सूरत में आपको 3 बार लिकाल्लाह का लफ्ज मिलेगा, कि लोगो अल्लाह से मिलने को याद रखो, 36, 23 और 5 नंबर आयत में। फिर जिद्दोजहद और कोशिश का लफ्ज 2 बार इस सूरत में है, और अभी देख लें सूरत के शुरू में भी और आखिर में। आयत नंबर 6, वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, जो जहाद मेहनत कोशिश कोई भी लफ्ज लगा ले करेगा अपनी जात को फायदा देगा। और आयत 69 जो बिल्कुल आखिरी आयत है सूरत की, वल्लजीना जाहदु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करेगा अल्लाह उसे रास्ते दिखाएगा, मन जद्दा वजदा। फिर इस सूरत में हिजरत का लफ्ज 2 बार है, आयत 26 और आयत 56 में। सबील, यदि 2 रास्ते हैं तो यू कैन चूज, जन्नत में जाना है कि जहन्नुम में, अल्लाह की रजा या अल्लाह की नाराजगी, दोनों का तज़किरा मिलेगा 2 दफा, 69 में अल्लाह का रास्ता और आयत नंबर 12 में काफिर लीडरों का रास्ता बताया जाएगा। अब मुझे लगता है कि 80% चीजें तो आपको सूरत की समझ ही आ गई हैं। आइए जरा इसको तर्जमे के साथ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुकू नंबर 1 आयत 1 से 13, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि इनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान ले आए हैं, हम इन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे? इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा, यकीनन अल्लाह ताला इन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं, और इन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे। आ गया जवाब, यानी आजमाइशें क्यों आती हैं? ताकि सच्चे झूठे अलग हो जाएं। क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे? ये लोग कैसी बुरी तजवीजें कर रहे हैं जिसे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त बस आने ही वाला है, वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है, और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले की कोशिश करता है। आप सबको अल्लाह जहाने का, ये सुनने का, ये पढ़ने का, रातों की तरावियों का बेहतरीन अजर अता फरमाए। वैसे तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है, और जो लोग ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक काम किए, हम इनके तमाम गुनाहों को इनसे दूर कर देंगे और इन्हें नेक आमाल के बेहतरीन बदले देंगे। अल्लाह हमारे साथ भी ये मामला फरमा। हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। हाँ, अगर वो ये कोशिश करें कि आप मेरे साथ इसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो इनका कहना ना मानिए। तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, फिर मैं हर उस चीज से जो तुम करते थे तुम्हें खबर दूंगा। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम किए, इन्हें अपने नेक बंदों में शुमार कर लूंगा। और बस लोग ऐसे भी हैं जो जुबानी कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आन पड़ती है तो लोगों की ईज़ा दही को अल्लाह ताला के अजाब की तरह बना लेते हैं। हाँ, अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी ही हैं, क्या दुनिया जहान के सीनों में जो कुछ है अल्लाह उसे नहीं जानता। जो लोग ईमान लाए अल्लाह इन्हें भी जाहिर करेगा और मुनाफिकों को भी जाहिर करके रहेगा। कुफार ने ईमान वालों से कहा, अब ये है धोखा जो आज भी लोग देते हैं अपने प्यारों को, क्या कि तुम हमारी राह की ताबेदारी करो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। हकीकत में कोई नहीं उठाता, हालांकि वो अपने गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने वाले, ये तो महज झूठे हैं। अलबत्ता ये अपने बोझ ढो लेंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ भी, और जो कुछ झूठ ये बांध रहे हैं इन सब के बारे में इनसे सवाल किया जाएगा। खूबसूरत रुकू था, छह आयतें हैं इसमें ईमान में। और ये आप लिखें अमल का नुक्ता, जहां भी इस दौर की सूरतें आएंगी, जहां जुल्मों सितम था, परसिक्वेशन थी, बिलाल को पत्थरों पे घसीटा जा रहा था और बीवी सुमैया के जिस्म को चीरा जा रहा है दो ऊंटों के बीच में, वहां ईमान का बहुत जिक्र होगा। ये मक्की सूरतों का एक मिजाज है। पहली आयत देखिए, अनकबूत 2, अहसिबन नास युतरक यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। जन्नत पाने के लिए कुर्बानियों और आजमाइशों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसका एक और टॉपिक भी लिखिए, और वो क्या है, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारे, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं, यहीं से चले जाओ। सेंसिटिव सेल्फ वर्शिपिंग सेल्फ प्रेजिंग लोग अल्लाह के दीन के नहीं होते, वो यहीं से चले, उनसे दीन के तकाजे नहीं निभेंगे। परहेज नहीं होता ना, दवा तुम खा ही रहे, परहेज नहीं हो रहा गुनाहों से। फिर अनकबूत 7, ईमान वाले एक एक नेकी पर कई कई गुना अजर पाएंगे। अनकबूत 9, मोमिनों के लिए जन्नत में जाने के लिए सालेहीन की सोहबत लाजमी है। दुआ करें कि रमजान के बाद भी हमें अल्लाह सालेहीन का साथ अता फरमाए। अनकबूत 10, इंसान की असल आजमाइशों में खुलती है। सच है ना, आपने देखना है ना आपकी दोस्त कौन सच्ची है कौन झूठी, तो उसे कुछ मांगी, देखा करे मुश्किल वक्त में आपके पास कौन होता है। शादियों दावतों पार्टियों में तो सब होंगे, जब आपको जरूरत पड़ती है उस वक्त कौन होता है। तो खरे और खोटे की पहचान होती है आजमाइशों में, आयत 11। और 12, हर किसी को अपने अपने गुनाहों का बोझ उठाना पड़ेगा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फेथ इन एक्शन, राह हक में आने वाली आजमाइशों में साबित कदम रहना, आजमाइशों में अपनी सलाहियतों को पहचान कर और भी निखारना है, और सब्र से मुसीबतों में डटे रहना है। वालिदैन भी अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दें तो इनका कहना नहीं मानना, लेकिन उनके साथ बा अदब रहना है। हर इंसान अपने अमल का जवाब दे खुद है, इसलिए अपने आमाल की फिक्र करनी है। तो इस रुकू से अब आगे सूरत में मुख्तलिफ अंबिया के दौर के इस्तकामत वाले लोगों की कहानियां आ रही हैं। सबसे पहली कहानी हजरत नूह की इस्तकामत, रुकू नंबर 2, 14 से 22। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिह, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनमें 950 साल तक रहे, फिर तो इन्हें तूफान ने धर पकड़ा और वो थे भी जालिम। फिर हमने इन्हें और कश्ती वालों को निजात दी, और इस वाक्य को हमने तमाम जहान के लिए इबरत का निशान बना दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तआला की इबादत करो और इससे डरते रहो, अगर तुम में दानाई है तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है, तुम तो अल्लाह तआला के सिवा बुतों की पूजा कर रहे हो, यानी पूजा पाठ कर रहे हो, और झूठी बातें दिल से घड़ लेते हो। सुनो, जिन जिन की भी तुम अल्लाह के सिवा पूजा पाठ कर रहे हो, वो तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं। बस तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ही से रोजियां तलब करो और इसी की इबादत करो और इसी की शुक्रगुजारी करो और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और अगर तुम झुटलाओ तो तुमसे पहले की उम्मतों ने भी झुटलाया है। रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा देना ही है, यानी रिएक्शन से काम छोड़ नहीं देना। क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तदा किस तरह अल्लाह ने की, फिर अल्लाह इसी को दोहराएगा? ये तो अल्लाह पर बहुत ही आसान है। कह दीजिए कि जमीन में चल फिर कर तो देखो किस तरह अल्लाह ने इब्तदा में खल्क की पैदाइश की, यानी इब्तदान पैदाइश की, फिर अल्लाह तला ही दूसरी नई पैदाइश करेगा। अल्लाह तला हर चीज पर कादिर है, जिसे चाहे अजाब करे, जिस पर चाहे रहम करे। तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। ना तो तुम जमीन में अल्लाह ताला को आजिज कर सकते हो, ना आसमान में। अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई वाली और मददगार ना है। क्या पता चला? फेथ इन एक्शन, आजमाइश में अल्लाह की खैर को पहचानना, यानी शर में खैर है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए आजमाइशों में अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत करनी है। अब आगे बहुत प्यार से बताया जा रहा है कि अक्सर इंसान दीन छोड़ता है दोस्तों के लिए। हमारी मजबूरी हमारी सहेलियां होती हैं, और कई ऐसे लोग जो हमें अल्लाह की तरफ बुला रहे होते हैं वो हमें दुश्मन लगते हैं। कयामत के धमाके के साथ हमारी दोस्ती और दुश्मनियों के मेयार कैसे बदलेंगे? आइए देखें रुकू नंबर 3, 23 से 30। दुनिया में बाहमी मेल जोल करने वाले कल दुश्मन होंगे। 1 सेकंड गौर करें, ये क्या जुमला है? जितनी सोशलाइजिंग करते हैं ना, अगर अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम हो गया तो कल वो आपके दुश्मन होंगे। वल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाहि वलिक़ाइही, जो लोग अल्लाह तआला की आयतों और इसकी मुलाकात को भुलाते हैं वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो चुके हैं, पर इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इनकी कौम का जवाब सिवा इसके कुछ न था कि कहने लगे कि इसे मार डालो या इसे जला दो। आखिर अल्लाह ने इन्हें आग से बचा लिया। इसमें ईमानदार लोगों के लिए तो बहुत सी निशानियां हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, इन्हें तुमने अपनी आपस की दुनियावी दोस्ती की बिना पर ठहरा लिया है। तुम सब क्यामत के दिन एक दूसरे से कुफर करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत करने लगोगे, और तुम्हारा सबका ठिकाना दोजख होगा और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। जरा अपने प्यारों को जहन में लाइए, और किसी की ऐसी बात सुनकर मानते हुए जो अल्लाह से दूर करे, इस आयत को याद कर लीजिएगा। बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए और कहने लगे, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वो बड़ा ही गालिब और हकीम है। नोट किया अपने आयत? मक्का में जुल्म का शिकार मुसलमानों को इशारा दिया जा रहा है कि इब्राहिम ने हिजरत की तो तुम भी कर लो। और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता किए, यानी हिजरत के तोहफे। औलाद मिली हिजरतों के बाद, और हमने नबूवत और किताब इनकी औलाद में ही कर दी, और हमने दुनिया में भी इसे सवाब दिया, और आखरत में तो वो सालेह लोगों में से है। और लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करो, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम बदकारी पर उतर आए हो, जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो और अपनी आम मजलिसों में बेहयाइयों का काम करते हो? इसके जवाब में इसकी कौम ने सिवाय इसके और कुछ नहीं कहा, बस जा, यानी गुस्सा किया। अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह ताला का अजाब ले आ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार इस मुफसिद कौम पर मेरी मदद फरमा। आप भी दुआ कीजिए, रब इंसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन। अपने बच्चों को ये दुआ याद करवाइए प्लीज। ईमान से मुतल्लिक दो आयात, 24 अनकबूत, इब्राहिम के ईमान की गर्मी नमरूद की जलाई हुई आग से ज्यादा थी, इसीलिए नहीं जले। अल्लाह बच्चों में ईमान भर दे। अनकबूत 26, हजरत लूत अपनी नबूवत से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अमल का नुक्ता, अगर दीन का काम करना है तो तन्हाइयों को भी पाक करना होगा, वरना रुसवाइयां मिलेंगी। फेथ इन एक्शन, अल्लाह की खातिर लोगों से मोहब्बत करनी है, जितना मुमकिन हो अल्लाह के दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे माहौल में नहीं रहना जहाँ अल्लाह तआला की नाफरमानी हो। बोलिए इंशाल्लाह। अब आखिरी रुकू, आखिरी आयतें पारे की, 31 से 44, मुजरिम कौमों की इबरतनाक सजाएं या मिसालें। वलम्मा जात रुसुलुना इब्राहिम बिल बुशरा, और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे, कहने लगे इस बस्ती वालों को हम हलाक करने वाले हैं, यकीन यहाँ के रहने वाले गुनाहगार हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इसमें तो लूत अलैहिस्सलाम है। फरिश्तों ने कहा यहाँ जो हैं हम इन्हें बखूबी जानते हैं, यानी उनके सर पे नशा सवार था बेहूदगी का। हजरत लूत को और इनके खानदान को इसके सिवा इनकी बीवी के हम बचाएंगे, अलबत्ता वो औरत पीछे रह जाने वालों में से है। फिर जब हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इनकी वजह से गमगीन हुए और दिल ही दिल में रंज करने लगे। कासिदों ने कहा आप खौफ न खाइए न अजुर्दा हो, हम आपको बिमा आपके मुतल्लकीन के बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी के वो अजाब के लिए बाकी रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर आसमानी अजाब नाजिल करने वाले हैं इस वजह से कि वो लोग हुक्म को नहीं मान रहे थे। अल्लाह अगर आज भी अजाब आए तो हमें बचा ले उसमें से। अलबत्ता हमने इस बस्ती को बिल्कुल इबरत की निशानी बना दिया इन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क्यामत के दिन की तवक्को रखो और जमीन में फसाद ना करते फिरो। फिर भी उन्होंने इन्हें छुटलाया, आखिरकार इन्हें जलजले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में बैठे के बैठे मुर्दा होकर रह गए। और हमने आदियों और समूदियों को भी गारत किया जिनके पास मकानात तुम्हारे सामने जाहिर हैं, और शैतान ने इन्हें इनकी बदामालियां आरास्ता कर दिखाई थी और इन्हें राह से रोक दिया था, बावजूद इसके के वो आंखों वाले और होशियार थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी इनके पास हजरत मूसा खुले मोजे लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने जमीन में तकबर किया लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले ना हो सके। फिर तो हर एक को हम इसके गुनाहों के वबाल में गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया। इनमें से बास पर हमने पत्थरों का मीह बरसाया और इनमें से बास को जोरदार सख्त आवाज ने दबोच लिया, और इनमें से बास को हमने जमीन में धसा दिया और इनमें से बास को हमने डबो दिया। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि इन पर जुल्म करे, बल्कि यही लोग अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज मुकरर कर रखे हैं इनकी मिसाल मकड़ी किसी है, वो भी एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर है। अलबत्ता ये वो जान लेते, अल्लाह ताला इन तमाम चीजों को जानता है जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं, वो जबरदस्त और जी हिकमत है। हमने मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा दिया, इन्हें सिर्फ अकल वाले ही समझते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को मसलहत और हक के साथ पैदा किया है, ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है। तो ये था आज का पारा, एक आयत ईमान से मतलब 44 अनकबूत। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, इस आखिरी आयतों का टॉपिक गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले जो जरा सी फूंक से खत्म हो जाते हैं। इसलिए बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला पर नजरें रखिए। आपको तय कि मकड़ी का जाला कितना कच्चा होता है और कैसे बनता है, और कैसे अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल देकर इधर आज के सारे वेब सिस्टम को बताया। लिखे लफ्ज वेब, वेबसाइट, ये है आज की वेबसाइट्स, न्यूड, गंदी, बेहूदगी फैलाने वाली एंटी इस्लाम चीजें। तो अपनी नस्लों को इससे इंशाल्लाह बचाना है, जिंदगी में हर उस काम की नियत करनी है जिसका इंजाम आखिरत में अच्छा हो, और अल्लाह के सिवा किसी को अपना सहारा नहीं जानना। ईमान की शाखों में आज हमारे पास दो चीजें, खाने पीने में हराम चीजों से बचना है, हर चीज अपनी असल के एतबार से हलाल है। हराम वही है जिसको अल्लाह ने हराम कहा, मशरूबात में शराब हराम है। जान को खतरा हो तो शरायत के साथ सिर्फ इतना कुछ खा सकता है इंसान जिससे हलाल तक पहुंच जाए। और सूरह बकरा 173 में हम देख चुके, जानवर हलाल को और हलाल तरीके से ज़िबा किया जाए तो खा सकते हैं। हराम चीज से इलाज भी करने से बचना है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हलाल भी जाहिर है तो हराम भी जाहिर है, बीच में शुबे वाली चीजें हैं। बुखारी की रिवायत है 25 नंबर, और 40th नंबर शाख क्या है, हराम लिबास और हराम बर्तनों से इवॉइड करना है, इज्तनाब करना है। लिबास कैसा हो जिस्म को ढांपे, खूबसूरत भी लगे, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत तंग और बारीक ना हो نمود و نمائش اور اترانے اور دکھانے کے لیے نہیں پہننا. اور یہ بات ہم سورت الاعراف کی آیت 27 میں پڑھ چکے. سونا اور ریشم مردوں پر حرام ہے اور داماد بھی مرد ہوتا ہے. خدا کے لیے اس کو سونے کی انگوٹھی نہ پہنائے, نہ اس کو ریشم کے کوئی کپڑے پہنائے. اسلام راہبانہ طرز عمل سے منع کرتا ہے, یعنی خوش ہوں لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں. سونے چاندی کے برتنوں کی ممانعت ہے, اور غرور اور تکبر کے طور پر جسم سے نیچے یعنی پاؤں کے قریب کپڑے کو گھسیٹنا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور کرے گا. یہ روایتیں آپ پڑھتے ہیں 4212 مشکات کی روایت ابن عمر سے. اور اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم پہننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا, یہ بھی روایت بخاری اور مسلم میں ہے. آج کے پارے میں جو پیغام تھا اس کو لے لیجئے. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں, چنگیزی ہے یہ. اللہ ہم سب کو مسلمان ہونے کا احساس دے کر کھڑا کر دے. آج چونکہ بتر اور ریاکاری کی باتیں تھیں اور امت مسلمہ میں بھی وہ گندگی آ گئی, تو بڑے پیار سے یہ دعا مانگتے ہوئے جائیے گا گھروں کو. اللہم اجعلنی شکورم وجعلنی صبورم وجعلنی فی عینی صغیرم وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنا شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بندہ بنا اور بندی بنا, اور مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنا. مسند بزار کی بھی روایت ہے اور مجموع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.